الحمد للہ وحدہ لا شریک لہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ ایک حدیث ہے، عن علی بن الحسین نے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ یہ حدیث کی کتابوں میں جو حدیثیں ہمیں ملتی ہیں ان میں بہت ہی ایک امپورٹنٹ حدیث ہے جس کا مرتبہ یعنی کہ بہت ہی ہائی لیول پہ ہے۔ اس حدیث کے بارے میں علماء کرام تمام کے تمام جو ہے وہ بہت ساری کتابیں لکھ چکے ہیں اور بہت ساری یعنی کہ اس کی میں ڈیٹیلز ہمیں ملتی ہیں۔ اور مثال کے طور پہ صرف امام ابو داؤد جو کہ بہت بڑے محدث ہیں اور صحاستہ کی جو چھ بڑی کتابیں جس حدیث کی ہمیں ملتی ہیں جسے صحاستہ کے نام سے ہم جانا جاتا ہے، بخاری، مسلم، ابو داؤد، نسائی، ترمذی اور ابن ماجہ، ان میں کتابوں میں تھرڈ فورتھ نمبر پہ جو لیول آتا ہے ظاہر ہے بخاری اور مسلم کے بعد وہ نسائی اور ابو داؤد کا ہی آتا ہے۔ تو یہ ابو داؤد رحمہ اللہ جو اتنے بڑے محدث ہیں یہ فرماتے ہیں کہ میری کتاب میں عقل مند اور دانشور یعنی کہ ایک انٹیلیجنٹ آدمی کے لیے چار حدیثیں کافی ہیں۔ جو شخص بھی یہ چاہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرے اس کے لیے یہ چار حدیثیں کافی ہیں۔ اور امام ابو داؤد کے بارے میں حضرت حسین بن محمد بن ابراہیم رحمہ اللہ خاص طور سے فرماتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا من اراد ان یتمسک بسننی فلیقرأ سنن ابی داؤد۔ یعنی کہ امام ابو داؤد کا اتنا بڑا مرتبہ ہے کہ ان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں فرمایا ان اتنے بڑے بزرگ کو کہ جو کوئی بھی سنت پہ عمل کرنا چاہے، جو ارادہ کرے کہ وہ میری سنت کو پکڑے، اسے چاہیے کہ سنن ابو داؤد پڑھے۔ اور سنن ابو داؤد کے خود جو مصنف رحمہ اللہ ہیں وہ فرماتے ہیں کہ میری کتاب میں چار حدیثیں ایسی ہیں جن پہ جو عمل کر لے وہ پوری سنت پہ گویا کہ عمل کرنے کے لیے اس کے لیے کافی ہے ایک عقل مند آدمی کے لیے۔ ان چار حدیثوں میں سے نمبر ون آف کورس انما الاعمال بالنیات، کسی بھی عمل کا دار و مدار اس کی نیت پر ہوتا ہے۔ اس بہت ساری روایات میں حدیث کی کتابوں میں یہ روایت ہمیں ملتی ہے۔ پھر نمبر ٹو حدیث جو امام ابو داؤد فرماتے ہیں جس پہ عمل کر لے وہ ہے من حسن اسلام المری ترکہ ما لا یعنی، یعنی انسان کے کسی بھی آدمی کے اچھے اسلام کے لیے یہ کافی ہے کہ ترکہ ما لا یعنی، وہ اس غیر ضروری اور ان نیسیسری باتوں کو، غیر مفید باتوں کو چھوڑ دے جو اسے کنسرن نہ کرتی ہو۔ یہی وہ روایت ہے جو ابھی تلاوت ہم نے کی عن علی ابن الحسین سے، جس میں فرمایا گیا قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من حسن اسلام المری ترکہ ما لا یعنی، کہ اسلام اچھے اسلام کسی آدمی کے اچھے اسلام کے لیے اٹ از انف کہ وہ غیر ضروری اور ایسی باتوں کو جو مفید نہ ہوں، ان نیسیسری ان امپورٹنٹ باتوں، ان سے ابسٹین کرے، انہیں چھوڑ دے، یہ انسان کے لیے کافی ہے۔ اور پھر آگے امام ابو داؤد نے جو تیسری روایت اپنی کتاب کا حوالہ دیا، اس میں لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخی ما یحب لنفسہ، آدمی کے ایمان کے لیے کسی ایک کے لیے اس کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا اس وقت تک جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے بھی وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ اور فورتھ حدیث الحلال بین والحرام بین وما بینهما مشتبہات فی من اتقى المشتبہات فقد استبرأ لدینه، کہ حلال بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان کر دیا، حرام بھی بیان کر دیا، اور جو کچھ اس کے درمیان ہے وہ مشتبہات ہیں، جو کوئی بھی ان مشتبہات سے بچے گا اس نے اپنا دین صاف کر لیا، پاک کر لیا اور محفوظ کر لیا۔ تو امام ابو داؤد نے یہ چار روایات بیان کی کہ جو کوئی اس میری کتاب میں ان چار روایات پہ عمل کر لے گا وہ گویا کہ سنن پہ، سنت پہ اور صحیح شریعت پہ عمل کرنے والا بن جائے گا۔ کمنگ ٹو آر پوائنٹ، ترک ما لا یعنی، یعنی کہ جو اچھا اسلام، جو ہم نے ہمارا آج حدیث اور فوکس اور کانسنٹریشن ہماری جس پہ ہے وہ من حسن اسلام المری ترک ما لا یعنی، کہ انسان کے فائدے کی جو چیز ہے وہ یہی ہے کہ وہ ان نیسیسری ان امپورٹنٹ باتوں کو چھوڑ دے اور اپنا فوکس، اپنی کانسنٹریشن اس چیز پہ لگائے جو اسے فائدہ دے سکتی ہے۔ एक देर वॉज अ थियोरी विच वॉज डेवलप्ड बाय एक फेमस साइकोलॉजिस्ट एंडर्स एरिक्सन की, एंड इस थ्योरी के मुताबिक इसी थ्योरी को फिर बाद में पॉपुलराइज किया मैल्कम ग्लैडवेल ने अपनी बुक आउटलियर्स के अंदर, एक जो नेशनल बेस्ट सेलर थी आउटलियर्स ये बुक, इसमें मैल्कम ग्लैडवेल ने भी इस थ्योरी को बहुत ज़्यादा यू नो पॉपुलराइज किया। ये थ्योरी स्टेट करती है कि अक्रॉस ऑल फील्ड्स ऑफ ह्यूमन एंडेवर इट टेक्स अबाउट 10,000 आवर्स ऑफ डिलिबरेट प्रैक्टिस टू मास्टर अ स्किल। यानी क्या मतलब है इस बात का, जो रिसर्चर्स हैं और साइंटिस्ट्स हैं आजकल के ज़माने में तो यू नो हर चीज़ पे रिसर्च होती है और हर चीज़ को एनालाइज करके उसके सारे प्रोज एंड कॉन्स और सारी उसकी डिटेल्स को यू नो असेस करके और फिर एक नतीजा एक कंक्लूजन निकाल लिया जाता है। तो इस थ्योरी के मुताबिक जो रिसर्चर्स थे उन्होंने ये देखा, उन्होंने तमाम जो अपनी अपनी फील्ड्स के जो बेस्ट परफॉर्मर्स प्रोफेशनल्स सही जो जीनियसेस भी होंगे उसमें हर तरह के लेवल के लोग लिए। मिसाल के तौर पे एक टेनिस एक फील्ड उन्होंने चूज़ की जैसे टेनिस है, अब टेनिस प्लेयर्स हैं इसमें प्रोफेशनल एथलीट्स हैं जो टेनिस प्लेयर्स हैं जितने भी अक्रॉस द ग्लोब, उनके उन्होंने लाइफस्टाइल्स को मॉनिटर किया। और फिर इसी तरह अगर कोई कुक है एक बावर्ची है उससे लेकर ऑनवर्ड्स एक साइंटिस्ट है एक एथलीट है एक राइटर है या कोई मैथमेटिशियन है कोई अपनी अपनी किसी भी रेलेवेंट फील्ड का कोई कंप्यूटर का कोई सॉफ्टवेयर एक्सपर्ट है कोई हार्डवेयर कोई मिलिट्री एनालिस्ट है कोई फौजी है कोई सोल्जर है कोई भी अपनी लेवल की अपनी फील्ड का जो स्पेशलिस्ट है या कह सकते हैं कि प्रोफेशनल है, उन्होंने हर एक एक इंडिविजुअल फील्ड को एनालाइज किया और ये समझने की कोशिश की कि व्हाट इज़ इट that it takes for somebody to you know achieve success in their particular field या line। और उन्होंने उसका conclusion ये निकाला जो इस theory के अंदर outliers में Malcolm Gladwell ने पेश किया और popularize किया, उस theory में ये फिर state किए इन्होंने कि across all fields of human endeavor it takes about 10,000 hours of deliberate practice to master a skill। roughly 10,000 घंटे लगते हैं किसी इंसान को अपनी respective field के अंदर अपने skill को master करने के लिए। जैसे कि हमने अब मिसालों में समझ रहे थे, अगर एक टेनिस प्लेयर है या एक बावर्ची है वो कुक करता है, पहली दफ़ा वो उसको चाय बनानी भी नहीं आती, मिसाल के तौर पे एक बंदा है वो चूल्हे पे सिर्फ पत्ती रखता है और वो उसमें दूध डाल के उसको जला देता है या बॉयल ओवर बॉयल करके उसको इसका टेस्ट ख़राब कर देता है या उसे पूरी तरह से बॉयल ही नहीं करता और वो कच्ची चाय पीता है और उसमें टेस्टलेस अजीब सा मज़ा ही नहीं आता। फिर वो स्लोली ग्रेजुअली अपनी उस फील्ड में टाइम लगाता है वक्त लगाता है लगाते 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 एक टाइम आता है कि वो एक हाईएस्ट लेवल का प्रोफेशनल कुक बन जाता है। या एक टेनिस प्लेयर है वो शुरू में उसे रैकेट सीधी तरह से पकड़ना नहीं आता, वो प्रैक्टिस करता है पहले नेट प्रैक्टिस करने की कोशिश करता है शुरू से बचपने से, फिर वो करते 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 स्टार्ट ही प्रैक्टिसेस डेली या एटलीस्ट रेगुलरली और एटलीस्ट करते करते फिर एक टाइम पीरियड आता है कि ही मास्टर्स द स्किल टू प्ले टेनिस। या एक बिजनेसमैन एक स्टॉक ट्रेडर है शुरू में एक काम शुरू करता है जब एक स्पेकुलेटर होता है वो बहुत सारा एकदम से अपने फील्ड के अंदर जब पैसा लगाता है अपना या लोगों का या जिसका भी तो वो ओवर स्पेकुलेट कर देता है नुकसान करता है और मोस्ट डेफिनेटली ऐसा होता है क्योंकि ये जो सक्सेस होती है इसके बारे में मशहूर इन्वेस्टर रिक रूल ने जैसे कि कहा कि इंसान की जो साइकोलॉजी होती है वो ये समझ बैठता है अक्सर कि ही एक मिसकंसेप्शन उसके दिमाग में हो जाती है कि वो ये समझता है कि ही कन्फ्यूजेज बुल मार्केट विद हिज ओन जीनियस। वो ये समझता है कि तो मेरा कमाल था मैंने बहुत ज़्यादा तेज़ी मार्केट में आ गई और बहुत ज़्यादा पैसा कमा लिया, और वो बुल मार्केट जब जाती है तो उसको उसका सारा जीनियस निकल जाता है और फिर वो ये डस खाने के बाद ठोकर खाने के बाद सीखता है। तो एनी हाउ जस्ट टू फोकस ऑन आर ओरिजिनल टॉपिक विच इज़ तर्क माला, यानी कि अननेसेसरी चीज़ों को छोड़ देना, विच व्हाट इट टेक्स इज 10,000 आवर्स ऑफ रेगुलर प्रैक्टिस इन एनी रेलेवेंट फील्ड टू अचीव सक्सेस। टू मास्टर अ स्किल, कोई भी लाइन इंसान चूज करेगा उसमें कम से कम 10 घंटे लगाएगा, तब कहीं जाके वो उस लाइन के उस लेवल के मास्टर करेगा अपने स्किल को। मिसाल के तौर पे आज कोई बंदा सोचता है कि मैं एक आलिम बन जाऊँ, तो वो डेली मदरसे स्टार्ट करता है जाना पढ़ना, और डेली 2 से 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे जो भी एक लेवल होता है। या एक बंदा सोचता है कि मैं यार कोई कॉलेज जाता है स्कूल के बाद, बंदा यूनिवर्सिटी जाता है, वो सोचता है कि मैंने ग्रेजुएट होना है, उस ग्रेजुएट होने के लिए ही हैज़ टू स्पेंड अ सर्टन नंबर्स ऑफ आवर्स जो उसे स्पेंड करना पड़ता है यूनिवर्सिटी में, वो उसके क्रेडिट आर्स पर डेवलप होते हैं और 3 से 4 साल में जाके वो ग्रेजुएट होता है। लेकिन अगर वो फिर स्पेशलाइजेशन करता है किसी पर्टिकुलर फील्ड में, लॉ में जाता है या पीएचडी करता है कोई मैथमेटिक्स में, कोई इंजीनियरिंग में, कोई टेक्नोलॉजी में, किसी भी अपनी रिस्पेक्टिव लाइन में, एनी हाउ, तो व्हाट इट टेक्स इज जो रेगुलरली पढ़ते 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 वो चीज़ को अगर कोई इंसान समझे कि डेली के 3 घंटे अपनी रिस्पेक्टिव फील्ड में लगाता है मिसाल के तौर पे, तो 1 साल में रफली कहीं जाके उसके वो 1,500 घंटे के करीब ही बनते हैं। एंड 10,000 घंटे अचीव करने का मतलब ये है कि रफली उसे मज़ीद एटलीस्ट 10 से 12 साल लगेंगे अपनी उस रिस्पेक्टिव अपनी उस रेलेवेंट फील्ड में उसे अपना स्किल को मास्टर करने के लिए, या ये कह सकते हैं कि अपनी लाइन में प्रोफेशनल और हाई अचीवर या सक्सेसफुल होने के लिए। तो इंसान का होता क्या है कि अक्सर किसी भी लाइन में लगते हैं लेकिन जो अननेसेसरी रास्ते में शैतान ने रुकावटें लगाई हुई होती हैं वो उस इंसान को उसके पाथ से इधर उधर डगमगा देती हैं और वो इधर उधर की लाइन में लगता है और अक्सर कामयाबी की तरफ से वो सक्सेसफुल जो उसका अपना स्किल होता है उस पर मास्टर नहीं कर पाता, क्योंकि शैतान उसको रास्ते में वरगला देता है, उसका अपने पाथ से उसके पांव लड़खड़ा जाते हैं, उसके रास्ते में 100 किस्म के वसवसे आ जाते हैं। बिकॉज 10,000 आवर्स अचीव करने का मतलब ये है, अगर कोई बंदा अपनी ज़िंदगी में डेली 2 घंटे लगाए तो उसे कहीं जाके मतलब 10,000 घंटे लगाने का मतलब यही होगा। ऑफकोर्स 2 घंटे भी 3 घंटे कोई बंदा डेली लगाएगा तो ये 12, 15, 18, 20 साल लग जाएंगे उसे ग्रेजुअली अपनी उस लाइन में सक्सेसफुल होने में। तो इतना पेशेंस और इतना सब्र तो क्योंकि इंसान में होता नहीं है, इंसान की फितरत है, इन्नल इंसान खुलिका अजूला, ये जल्दबाज है, इसकी फितरत के अंदर जल्दबाजी रखी है अल्लाह सुबहाना व ताला ने, तो वो कॉन्सनट्रेट नहीं कर पाता, वो अपनी सक्सेस में जल्दबाजी के चक्कर में सीढ़ियाँ फलांगने के चक्कर में शॉर्टकट्स तलाश करता है, जबकि साइंस और रिसर्च जो बात करती है वो ये है कि उसे अपनी जो सक्सेस में इन टू अचीव द रियल सक्सेस उसे कम से कम 10,000 आवर्स चाहिए उस सक्सेस को अचीव करने के लिए। लेकिन मोस्ट ऑफ अस जो हम लोग हैं, हम लोग इतना सब्र वाले और पेशेंस वाले क्योंकि होते नहीं हैं और इजीली हमारे पांव लड़खड़ा जाते हैं, डगमगा जाते हैं और हम अपने रास्ते से अपने पाथ से डी ट्रैक हो जाते हैं, और इस वजह से ही अमूमन जो मेजॉरिटी ऑफ लोग होते हैं वो अपनी उस लाइन में फिर मैक्सिमम लेवल पे स्किलफुल नहीं हो पाते। और यही वजह है वो हदीस पाक में आता है, नियामतानी मकबून उन फीमा कसीरों में नन्नास यस्सेहत वल फिराह, के 2 चीज़ें ऐसी हैं जिसके बारे में मेजॉरिटी लोग गफलत में पड़े हुए हैं, एक उसकी सेहत और एक उसकी फरागत। अब होता यह है कि इंसान किसी लाइन पे लगता है और वो उस लाइन पे चलता भी है, बट उसे रास्ते में ही टाइम एक स्टूडेंट होता है वो यूनिवर्सिटी कॉलेज का, अपने टाइम पे पढ़ने की बजाय आजकल एक बहुत ही कॉमन एक फ्रेज सुनने में मिलता है, आई एम प्रोक्रेस्टिनेटिंग, एक जो प्रोक्रेस्टिनेशन का जो कॉमन एक फिनोमिनन होता है वो स्टूडेंट को डिट्रैक्ट कर देता है, फजूल की बातों में, गप्पे लगाने में दोस्तों के साथ, वीडियो गेम्स खेलने में, पार्टीज़, क्लबिंग, इधर उधर के शौक, उनमें लगा रहेगा। और अगर जो उसके जो 10,000 आवर्स हैं वो उसके पास जब फ्री आवर्स हैं वो उस टाइम को वैल्यू नहीं करेगा अपनी, और जैसे कि हदीस में आया वो फीमा कसीरों में ननासी सेहत मकबून उन फीमा कसीरों में ननासी सेहत अलफिराक, मेजॉरिटी लोग इंसानियत गफलत में इस बात की पड़ी हैं, वो ये समझ रहे हैं हमारे पास तो अभी बहुत टाइम है, हमारी तो सेहत, हमारे पास तो बहुत अच्छी सेहत है, आज सेहत है तो वो ये सोचता नहीं है कि मैं इसे अपनी सही मायनों में अवेल करूं और यूटिलाइज करूं अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ को, और जो भी मेरी रिस्पेक्टिव लाइन है उस लाइन में लगूं। मिसाल के तौर पे अल्लाह ने दीन को हमारे लिए चूज़ किया, इन दीन इंद अल्लाह इस्लाम, अल्लाह ने तो हमारे लिए इस्लाम को चूज़ किया, और उसे चूज़ करने, उसे मास्टर, उसे स्किल करने के लिए तो एटलीस्ट 10,000 आवर्स की ज़रूरत है। और 10,000 आवर्स का मतलब ये है कि इंसान अगर एक डेली बहुत ज़्यादा दीनदार भी हो और वो डेली का एक घंटा भी उसमें लगाए तो उसे ही रिक्वायर्स 10,000 आवर्स, विच मीन्स एटलीस्ट अबाउट 20 something years टू एक्सेल इन दैट दीनदारी। वो होता ये है कि एकदम से किसी को शौक़ चढ़ता है जी मैं बहुत दीनदार बन जाऊं, वो रातों रात रात भर मुसल्ले पे बैठा हुआ है, दिन दिन भर रेगुलर रोज़े रखना शुरू हुआ, और फिर वो एकदम से उसका जब जोश ठंडा हुआ, उसका वो जो यू नो एक्साइटमेंट थोड़ा सी वो ठंडी हुई, तो वो बिल्कुल अपोजिट ट्रैक पे निकल गया और वो बिल्कुल फ़र्ज़ नमाज़ें भी छूटना शुरू हो जाएँ। तो 10,000 आवर्स अचीव करने का मतलब ये है कि बेशक एकदम से उस लाइन पे ना लगा जाए या लगाया भी जाए, लेकिन एटलीस्ट माइंड में बंदा रखे कि आई नीड एटलीस्ट दैट मच टाइम टू अचीव सक्सेस इन लाइफ। अगर मैंने उतना भी किसी भी रिस्पेक्टिव फील्ड में नहीं लगाया तो फिर साइंस भी ये बात मानती है कि उस चीज़ की स्किल को मास्टर करने में वो बंदा कामयाब नहीं होगा जब तक कि उसने एटलीस्ट इतना टाइम उस रिस्पेक्टिव फील्ड में ना लगाया हो। और इसीलिए अब बजाय अपने इंसान फालतू वक्त के और अपनी सेहत को बर्बाद करने के, अगर उस 10,000 आवर्स को अचीव करने की तरफ लग जाए तो ज़ाहिर है उसे सही जो यू नो सही मायनों में जो खुशी होगी वो तभी मिलेगी ऑफ कोर्स जब जो अल्लाह के नज़दीक दीन है, अल्लाह ने दीन इस्लाम रखा। और उस इस्लाम की ख़ूबी क्या है, मिन हुस्न इस्लामिल मरी, आदमी के इंसान की ख़ूबी क्या है कि वो तर्कहु मा ला यानी, कि वो ना यू नो ला यानी चीज़ों को अपनी ज़िंदगी से निकाल दे, छोड़ दे, तर्क कर दे, एब्सटेन फ्रॉम व्हाट डजंट कंसर्न यू। व्हाट डजंट कंसर्न यू का क्या मतलब, अब बैठे हैं टीवी देख रहे हैं, अब इस पर कोई टॉक शो चल रहा है, पॉलिटिक्स हो रही है हो रही है हो रही है, एक दूसरे से बहस भराए बहस लगे हुए हैं पॉलिटिशियंस, पहले हम टीवी में देखते रहेंगे, फिर उसके ऊपर से कोई मज़ीद टॉक शोज़ के ऊपर तबसरे हम देखते रहेंगे कि अच्छा इसका ये मतलब, इसका ये मतलब, फिर उस तबसरे के ऊपर आपस में मिल के बैठ के गैदरिंग में एक बहस मुबाइसा शुरू हो जाएगा, उसे डिस्कशंस हो जाएंगी, और फिर डिस्कशंस करते करते फिर उस बहस के ऊपर फिर मज़ीद दूसरी गैदरिंग्स के अंदर बहस बराए बहस और यू नो गपशप, ये क्या कॉन्सेप्ट होगा, आओ गपशप करते हैं। ये गपशप करने का मतलब क्या होगा, बेसिकली आओ हम टाइम ज़ाया करते हैं अपना, जो 10,000 आवर्स हमें अपने रिस्पेक्टिव फील्ड में सक्सेसफुल होने के लिए अचीव करने के लिए चाहिए थे, उससे डिट्रैक होने का आसान तरीका क्या है, और हम गपशप में टाइम वक्त ज़ाया करने में अपना लगा देते हैं। और ज़ाहिर है जितना भी वक्त ज़ाया करने के लिए तो लगा देंगे, उससे एंड ऑफ द डे हासिल तो कुछ होगा नहीं। असल जो हासिल करना ज़िंदगी का जो मकसद है, जो उसकी इंसान की जो खुशी, जो उसकी हैप्पीनेस है, उसकी प्रॉपर डेफिनेशन ही यही है कि इट्स अ सेंस, जैसे ये मशहूर एक इकोनॉमिस्ट था मार्क एनेल्स्की, उसने ये इसकी डेफिनेशन बनाई खुशी की, हैप्पीनेस अचीव करने की, वो ये है इज़ अ सेंस ऑफ वेल बीइंग दैट कम्स फ्रॉम अ ग्रेट सेंस ऑफ नोइंग दैट यू आर ऑन द राइट पाथ। खुशी का मतलब ही ये है कि इंसान को ये पता चले कि आई एम ऑन द राइट पाथ। अब ये बहस बराए बहस और इस तरह के वक्त ज़ाया करने से तो ज़ाहिर है इंसान को कभी भी राइट पाथ पे होने का यकीन नहीं आएगा, वो तो तर्क माला यानी से आएगा, यानी कि यू नो एब्सटेन फ्रॉम व्हाट डजंट कंसर्न यू। सही खुश मायनों में जो इंसान को हैप्पीनेस मिलेगी, जो खुशी मिलेगी, वो एक मशहूर ये जेरेमी बेंथम, जो कि एक फादर ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म जाने जाते हैं, और मेंटोर टू जॉन स्टुअर्ट मिल हैं, वाज द फिफ्थ वन ऑफ द फिफ्थ फर्स्ट इकोनॉमिस्ट टू टैकल द सब्जेक्ट ऑफ हैप्पीनेस। उन्होंने ये चीज़ हैप्पीनेस के बारे में सजेस्ट की थी कि इट मीन्स मैक्सिमाइजिंग प्लेजर एंड मिनिमाइजिंग पेन, दैट्स व्हाट हैप्पीनेस इज ऑल अबाउट, एंड व्हाट इट मीन्स इज کہ انسان خوشی میں جو کچھ بھی جو انسان کنزیوم کرتا ہے وہ اسے اس کے کنزیوم کرنے سے خوشی بھی ہو. اب یہ ٹاک شوز میں بیٹھے ہوئے ہوں یا گپ شپ لگا رہے ہوں یا وقت ضائع کر رہے ہوں, اس سے اینڈ آف دا ڈے کسی بھی انسان کو خوشی نہیں ملتی. وہ آپس میں پھر ظاہر ہے پولیٹکس اور ٹاک شوز اور گپ شپ اور جس طرح کے بحث مباحثے, ان میں اینڈ رزلٹ تو وہیں کہیں کا ملتا نہیں ہے, وہ تو وہیں کا وہیں زیرو رہتا ہے. انسان جو وقت, جو اپنی انرجی, جو ایفیشنسی, اپنی صحت انسان کسی بھی پروڈکٹیو کام میں لگا سکتا تھا اور اپنی کوئی اچھی پروڈکٹیوٹی اچیو کر سکتا تھا, اس میں کرنے کے اس نے اپنا وقت بھی ضائع کر دیا, اپنی ایفرٹ بھی ضائع کر دی, اپنی ایفیشنسی بھی ضائع کر دی. اور وہ اس حدیث کا مطابق نعمتانی مغبون فیما کثیر من الناس الصحت والفراغ, میجورٹی آف لوگ جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں ان چیزوں سے انہی میں وہ عام انسان نارملی شامل ہوتا ہے. یہی پریکاشن پریڈکشن ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 ایئرز اگو دے دی کہ وہ اپنا ٹائم ضائع کرتا رہے گا, اپنا وقت ضائع کرتے گا اور سوچے گا بھی نہیں کہ یار کبھی ایسا بھی وقت آئے گا کہ میرے پاس وقت ہی نہیں ہوگا, میرے پاس ٹائم ہی نہیں ہوگا کہ میں کسی پروڈکٹیو کام میں, کسی دین کے معاملے میں, کسی اللہ کے راستے میں اپنا وقت لگاتا, پھر اس کے پاس وہ ٹائم ہی نہیں بچے گا یا اس کے پاس وہ صحت ہی نہیں بچے گی, وہ ایفرٹ ہی نہیں لگا سکے گا, ایفیشنسی اس کے پاس اویلیبل ہی نہیں ہوگی کہ وہ اللہ کے راستے میں بھی نکل سکتا. اسی لیے فرمایا من حسن اسلام المری ترکہ ما لا یعنی, کہ انسان کے اچھی اسلام کی خوبی یہ ہے انسان کے, کسی مرد کے, آدمی کے, کہ وہ نا لا یعنی باتوں کو چھوڑ دے, انہیں ترک کر دے. یعنی کہ جو چیزیں انسان کو کنسرن نہیں کرتی اسے چھوڑ دے, اسے ڈس ریگارڈ کر دے, اپنی لائف سے نکال دے, اور جو چیزیں اسے کسی نہ کسی پروڈکٹیو کام پہ لگا سکتی ہیں, جو اسے کوئی نہ کوئی ریپ, کوئی بینیفٹ, اٹرنل بینیفٹ دے سکتی ہیں, اس پہ اگر اپنا وقت لگائے تو موسٹ سرٹنلی آف کورس سلولی گریجولی گھنٹہ, دو گھنٹہ, تین گھنٹہ, جو بھی اس کے اپنی کیپیسٹی میں ہو, وہ دن میں اگر گریجولی لگاتا رہے گا ایک ٹائم آئے گا کہ وہ 10,000 آورز لگا چکا ہوگا ایٹ لیسٹ, اور وہ موسٹ سرٹنلی پھر اپنے اس اسکل سیٹ کو اس کے اندر ماسٹر بھی انشاءاللہ کر پائے گا یا کر لے گا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں کسی نہ کسی فارم میں اس لایعنی باتوں سے ایبسٹین کرنے کی, انہیں اوائڈ کرنے کی اور دور رہنے کی, انہیں ترک کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور صحیح معنوں میں جو پروڈکٹیو کام ہیں, جو صحیح اٹرنل بینیفیشل چیزیں ہیں ہماری زندگی میں, ہماری لائف میں, وہ ان پہ ہمیں اپنے وہ 10,000 آورز لگانے کی توفیق عطا فرمائے. اور اسی لیے دعا ہمیں بتائی گئی, ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا وفی الآخرت حسنتا وقنا عذاب النار, کہ ہمیں دنیا میں بھی اچھائی, یہی حسنا حسن اسلام عطا فرما, اور آخرت میں بھی ہمیں اسی اچھے اسلام اور اچھائی کی نعمت عطا فرما. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین, سبحان ربک رب العزت عما یصفون, وسلام علی المرسلین, والحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.